अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, क्या से क्या बनाते हो, धन है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो।
हम सभी बाबा के बच्चे बहुत भाग्यशाली है। अभी गीत सुना कि बाबा हमें अपने से भी ऊंचा उठाते हैं। बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, हमें तीन लोक के मालिक बनाते हैं। बाबा की सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, हमारी आत्मा के रूप में, शालिग्राम के रूप में और देवी देवताओं के रूप में डबल पूजा होती है। तो इस कारण हम देखते हैं कि बाबा भल स्वर्ग रचते हैं पर स्वर्ग में खुद नहीं आते, हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है, माता पिता बंधु सखा स्वामी हर प्रकार के संबंध है। विशेष हमारे तीन संबंध है, पिता शिक्षक और गुरु। तो पिता के रूप में तो वर्षा देते हैं, इसलिए सब बच्चे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जिससे वर्षा मिलेगा क्यों नहीं पार प्यार करेंगे। टीचर के रूप में हमें पढ़ाते हैं, हमें परमधाम से रोज आकर पढ़ाते हैं। तो हम बच्चों का क्या कर्तव्य रहता है, जब टीचर रोज इतनी दूरी से आकर पढ़ाते हैं, जिस टीचर ने स्टूडेंट्स के लिए इतनी विश्वविद्यालय स्थापन की है, तो स्टूडेंट का क्या कर्तव्य है, पढ़ना, रोज पढ़ना, रोज मुरली सुनना। न सिर्फ यही हमारी पढ़ाई की विशेषता है कि सिर्फ हम सुनते नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो ज्ञान बहुत सुनते रहे, प्रवचनों में सत्संग में जाते रहे, गुरुओं से सुनते रहे, तो भक्ति में बहुत सुना। अब ज्ञान में क्या करना है, जो सुना उनका मनन मंथन करना है। अर्थात ज्ञान रत्नों को अपना बनाना है, नहीं तो हम कहेंगे बाबा ने ज्ञान दिया तो बाबा का ज्ञान का खजाना हो गया। परंतु उन ज्ञान के खजाने को अपना बनाने के लिए क्या करना पड़े, हमें मनन मंथन करके अपनी रीत से वो ज्ञान दूसरों को देना है, तब उसका जैसे मजा आएगा। जैसे देखो आज हम किसी आर्टिस्ट का चित्र बनाते हैं, देखते हैं, खुशी होती है कि ये बहुत अच्छा चित्र इसने बनाया, या बगीचे में जाकर फुलवाड़ी को देखते हैं, मन खुश होता है कि कितने सुंदर खुशबूदार फूल है। परंतु जितनी हमारे को खुशी होती है देखने वालों को, उससे ज्यादा खुशी बनाने वाले को होंगी। अर्थात चित्रकार को बहुत खुशी होंगी अपनी रचना देखकर, या बगीचे के माली को बहुत खुशी होंगी अपनी रचना फूलों को देखकर। तो इसी रीत से जब हम अपना खजाना हजम करके हम उनको देंगे तो हमको भी खुशी होंगी और लेने वालों को भी खुशी होंगी। क्या होता है कि लेने वाले हैं ना, यदि देने वाले उनकी मनोभावना समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, भगत है, ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है, कैसे हैं, उसी अनुसार बाबा कहते हैं ना, पल्स देकर उनको ज्ञान दो। हमको नाड़ी देखनी है कि उसको क्या चाहिए, सुख चाहिए तो सुख की बातें करनी चाहिए, शांति चाहिए तो शांति की बात करनी चाहिए, वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक रीति से प्रूफ देकर बात करनी पड़े। तो इसी रीति से क्या है कि हम भी जब पहले विदेश में गई तो हम लोगों को तो आदत थी कि इंडियन तरीके से ज्ञान देवें, 7 दिन में सब ज्ञान दे देवें। तो शुरू में क्या होता था, आत्मा परमात्मा, वेजिटेरियन खाना, ब्रह्मचर्य की पालना करना आदि आदि 7 दिन में हम बता देते थे। तो उससे क्या होता था, क्योंकि हम उन्हों की भावना नहीं समझते थे, उन्हों की कल्चर नहीं समझते थे, तो जब हम देवी देवताओं का चित्र भी सामने रखते थे तो ये समझते थे ये तो हिंदुओं की बात है, हिंदुओं का योग है, ये हमारे लिए नहीं है। जब देने वाली इंडियन है, चित्र सारे इंडियन थे, तो उन्होंने समझा ये तो कुछ नया है, विचित्र है, हमारे योग्य पता नहीं है। पर जब वहां के लोगों ने ज्ञान देना शुरू किया तो क्योंकि वो वहां की कल्चर जानते हैं, भाषा जानते हैं, उनको क्या चाहिए ये समझते हैं, तो क्या हुआ कि बहुत सहज हो गया। जब 2-4 टीचर वहां के निकल गए, उन्होंने अपनी रीत से देना शुरू किया, तो उसके जो भी फ्रेंड्स देश वाले थे उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया। और अभी हम लोग भी समझ गए हैं कि उनको ब्रह्मचर्य की बात 7 दिन में नहीं सुनानी है क्यों। और अभी भी योग शिविर में आप देखते होंगे कि योग शिविर में जो भी समझो शास्त्रों के विरुद्ध की बातें हैं वो एकदम नहीं बताते हैं, वो धीरे धीरे बताते हैं। सर्वव्यापी नहीं है ऐसे नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा परम धाम का वासी है ये जरूर बताएंगे। तो इसी रीत से जब हम उनकी भावना समझ जाते हैं, वो कहाँ तक हमारा ज्ञान सुनने के लिए तैयार है वो समझ जाते हैं, तो क्या है वो धीरे धीरे हजम कर सकते हैं। जैसे आज है, भल मिठाइयाँ तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु जिसकी हजम करने की शक्ति नहीं है उनको आप तला हुआ एकदम घी में बना हुआ खाना देंगे तो क्या होगा, उसको डायरिया हो जाएगा, जुलाब हो जाएगा। इसी रीत से हम लोगों ने भी जब ब्रह्मचर्य की बात 7 दिन में कहना शुरू किया तो विदेशी लोग भाग गए, कहा कि ये तो हमारे से नहीं होगा, ये तो मुश्किल है। परंतु अभी हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे तुम कौन हो, आत्मा हो, परमात्मा कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में शुरू में नहीं बताते हैं, ब्रह्मचर्य के बारे में शुरू में नहीं बताते हैं आदि आदि संभाल के। तो इसी रीत से जब ज्ञान हमने समझ लिया और धारण करते हैं जब ज्ञान को, तो क्या होगा, तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग और धारणा तीन सब्जेक्ट में आप यदि प्रवीण हो गए तो उनको तीर जरूर लगेगा। योग भी चाहिए ज्ञान के साथ साथ, और हमारी धारणा भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी मम्मा का दिन गया तो मम्मा की यही विशेषता थी कि ज्ञान तो सुनती थी परंतु बहुत मनन मंथन करती थी और फौरन धारण करती थी। इसलिए मम्मा का तीर सबको लग जाता था। तो इसी रीत से जब तक हम मुरली नहीं सुनेंगे तो हमारा मनन मंथन कैसे चलेगा। आप में से कौन है जो हर रोज मुरली, चाहे सवेरे दिन में शाम को पढ़ते हैं या सुनते हैं, जरा हाथ उठाना। ठीक है। और जो कभी कभी सुनते हैं, हफ्ते में एक दो बार क्लास में जाते हैं, वो जरा हाथ उठाना। हिम्मत रखो, सच्चाई से बताओ। हाँ, तो क्या है कि स्टूडेंट है ये, हमें जरूर याद रहे। आजकल बाबा इसके ऊपर बहुत मुरलियां चलाते हैं कि जिनको ये बुद्धि में होगा कि हम गॉडली स्टूडेंट है, इस राजयोग की पढ़ाई से हम स्वर्ग के मालिक बनने हैं, उनको कितना नशा रहेगा, बहुत खुशी रहेंगे। आज की रोज की मुरली में आजकल तो हफ्ते से बाबा यही कहते हैं, आपको नशा रहे, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़कर हम क्या बनते हैं। तो पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, बाबा कहते हैं। वो दुनिया भी कहा का भी है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, रुलेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। हाँ, दुनिया वाले भी ये गाते हैं। तो इसलिए हम बच्चों को भी पढ़ाई का महत्व समझना है, और ऐसे नहीं कि मुरली पीएम टीवी पर सुन लिया, टेलीविजन पर सुन लिया, या कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल में पढ़ लिया, काम उतर गया, ऐसे भी नहीं समझना। क्योंकि बाबा ने सेंटर इसलिए शुरू किए हैं कि हम सेंटर के वाइब्रेशन में आकर अपना संग भी मिले और वाइब्रेशन भी मिले, ऐसे वातावरण भी मिले जिसमें हमारा योग ठीक हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप वहां सेंटर पर भी मुरली सुनते हो और यहां भी मुरली सुनते हो, कितना फायदा होता है, होता है। हाँ, तो उसी रीत से, क्योंकि यहां तो सारा दिन यही खाना पीना और बाबा के बच्चों के साथ मिलना जुलना होता है, तो संग भी अच्छा है, अन्न भी अच्छा है, और भी कोई चिंता नहीं। तो इसलिए जैसे यहाँ तो जो भी मुरली सुनते हैं, क्लास सुनते हो, एकदम जैसे दिल को लग जाता है, उसी रीत से आप घर में सुनो टेलीविजन पर और क्लास में जाओ, उसमें भी बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए कम से कम हफ्ते में दो दिन तो क्लास में जाना ही चाहिए, गुरुवार को और संडे, सैटरडे, मंडे, जब भी आपको टाइम मिले हफ्ते में कम से कम दो बार जाओ। तो उससे क्या होगा कि आपको वहां का वातावरण का फायदा मिलेगा और फिर आप वहां मुरली को विशेष धारण कर सकेंगे। तो बाबा हम बच्चों की उन्नति के लिए श्रीमत देते रहते हैं। उसमें सबसे पहली श्रीमत है अपने को देह समझो, देह को भूलो, देह मत समझो, आत्मा समझो, देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो और पुरानी दुनिया को भूल, मुझ एक को याद करो। ये बाबा की पहली श्रीमत है, क्योंकि जितना हमारे अंदर देहभान होगा तो देह के संबंधी याद आएंगे, क्योंकि देहभान के कारण सब विकार आएंगे, एक विकार नहीं सब विकार। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये अभ्यास करना है कि मुझे आत्मभान में रहना है, देही अभिमानी होना है, अपनी देह से भी मोह तोड़ देना है, चेक करना है हमारी देह में तो बुद्धि नहीं जाती है, क्योंकि जिसको देहभान होगा वो क्या करेगा, वो सारा दिन अपना चेहरा आईने में देखेगा, मेरे कपड़े कैसे हैं, और लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी लेटेस्ट फैशन है, कौन सा लेटेस्ट कलर है, क्योंकि आप लोग तो मेजोरिटी साड़ियां पहनते हैं, कोई कोई सलवार कुर्ता भी पहनते होंगे, तो क्या है ये देखना है कि हमारी बुद्धि उसमें नहीं जाती है। इस कारण बाबा ने क्या किया है, अपना यूनिफॉर्म बना दिया, सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि सफेद कपड़े पहनते हैं तो नेचुरली है, सोचना नहीं पड़ता है कि कौन सा साड़ी और ब्लाउज मैचिंग होता है, साड़ी और पर्स मैचिंग होता है या नहीं, साड़ी और मेकअप मैचिंग होता है या नहीं, क्योंकि जो देहभान में है उसको थोड़ा ये ख्याल कर रहता है कि मेरा सब ठीक ठाक हो, इसलिए आईने में चेहरा 15-20 बारी देखेंगे, घड़ी देखेंगे कि हमारा चेहरा ठीक लगता है या नहीं, और फिर कपड़े ठीक ठाक करेंगे और फैशन, क्योंकि आजकल दुनिया में तो फैशन बहुत है और माताओं को विशेष कपड़ों का, गहनों का, घर का श्रृंगार करने का इतना शौक होता है, जो जहां भी जाएंगी क्या करेंगी कि इन्हों के घर में कैसे पर्दे हैं, कैसे डेकोरेशन है, कौन से चित्र लगे हैं आदि आदि। ये आजकल सारे नहीं, उन्हों का ध्यान फोन पर, साधनों पर, फोन है, गाड़ी है, जो मोटर बाइक चलाते हैं वो मोटर बाइक है, सब में मोह पड़ जाता है, आकर्षण होता है या इच्छा होती है, क्योंकि मोह का सूक्ष्म रूप है, लगाव का सूक्ष्म रूप है इच्छा, ये अच्छा लगता है, हमको ये इच्छा है कि हम ये खरीदें, तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी ये भी हमारा श्रीमद का दूसरा पाठ है कि हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। पवित्र माना सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, परंतु संपूर्ण निर्विकारी बनना है। इसलिए अभी अपने आप को चेक करना है कि मेरे में कौन से विकार हैं, देहभान है, मेरी बुद्धि देह में खींचती है कि मेरा देह कैसा है, क्योंकि आजकल तो मॉडर्न कुमारियां तो क्या करेंगी, सोचेंगी कि हमारा बहुत पतला कमर हो, पतली कमर, और इसलिए क्या करेंगे, रोज अपने आप को मापेंगे वजन क्या है और मेजरमेंट यहाँ का कितना है, और इतने तक कि खाने का भी मेजर करेंगे, क्योंकि जो मोटे हैं उनको डॉक्टर कहेंगे इतना परहेज करना है, एक रोटी ही खानी है, दिन में इतना कैलोरी ही खाना है, तो समझो जिसको देहभान है वो क्या करेंगे, सारा दिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पकाना है, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल लोग क्या है कि बॉडी कॉन्शियस तो हो गए हैं, देहभान तो है ही, परंतु हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं कि हमारी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए। विदेश में तो बहुत सोचते हैं हमको सफेद शुगर नहीं खानी है, ब्राउन शुगर ही खानी है, और सफेद चावल नहीं खाना है, ब्राउन चावल ही खाना है, क्योंकि सफेद चावल में पॉलिश करके सब निकाल देते हैं, इसलिए सफेद चावल नहीं खाना है, ब्राउन राइस अच्छा है, उसमें प्रोटीन भी अच्छा है आदि आदि। और शुगर कई तो बिल्कुल चीनी खाते नहीं, कई तो है बिल्कुल दूध की चीजें नहीं खाते। आजकल तो ये भी बहुत सवाल पूछते हैं कि देखो हम अहिंसा में मानते हैं, परंतु जब ओम शांति। तो ये देखना है कि हमारा किसी भी प्रति आकर्षण नहीं है, चाहे व्यक्ति है, चाहे वैभव है, चाहे साधन है, क्योंकि जितना हमारा साधनों में इंटरेस्ट होगा नेचुरली हमारी बुद्धि वहां जाएंगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम हमारा समय शक्ति धन अपने सिर्फ देह में नहीं लगाते हैं, देह के श्रृंगार में नहीं लगाते हैं, या सिर्फ खाना पीना सफाई में नहीं लगाते हैं, हमारा जीवन बैलेंस हो, घर की भी संभाल करनी है तो साथ साथ आत्मा उन्नति के लिए पढ़ाई और योग भी जरूर करना है, क्योंकि कई बार माताओं का एक तरफ ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। हाँ, जिसको पढ़ाई का और सेवा का शौक है वो सारा दिन पढ़ाई और सेवा करेंगे, बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, तो भी घर वाले नाराज हो जाएंगे कि ये क्या, हमको टाइम पर खाना नहीं मिलता, या हमको बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे कब आते कब जाते क्या करते हैं उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, उनसे उनके ऊपर नजरदारी नहीं रखते हैं, तो ये भी ना हो। क्योंकि मुझे याद है मैं फिजी में गई थी तो एक माता जो ज्ञान में 8-10 साल से थी, परंतु उसको घर में और धंधे में बहुत इंटरेस्ट था, और घर में उसके दो बच्चे थे, दो भतीजे थे, जो समझो दूर शहर से आए थे पढ़ने के लिए, जहां उनके अच्छी पढ़ाई हो सके स्कूलों में, इसलिए तो चार बच्चे थे। पति उसकी शॉप चलाता था वीडियो और कैसेट वगैरह की। तो वो माता क्या करती थी, चार बजे से उठकर उसको सारा घर का काम करना है, क्योंकि विदेश में तो नौकर नहीं, घर का काम करना है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, आंगन साफ करना है, घर साफ करना है, और खाना पकाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धुलाई करना, उसको कपड़ों को सुखाना, कपड़ों को इस्त्री करना, छह जनों का। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना टाइम जाता होगा। बच्चे 13, 14, 15 साल के थे, परंतु बच्चे पढ़ाई करते थे, इसलिए बच्चों को कोई जिम्मेवारी नहीं। फिर घर का काम पूरा करके वो शॉप में जाती थी पति को मदद करना, क्योंकि पति की जो शॉप थी तो वहाँ ही वो लोग रिकॉर्डिंग करते थे, वीडियो की कॉपी बनाते थे, कैसेट की कॉपियाँ बनाते थे, तो वो खुद जाके मदद करती थी। शाम को आकर फिर शाम का खाना ये वो, तो उसको एक 10 मिनट भी बाबा की याद में बैठने का टाइम नहीं, आधा घंटा भी मुरली सुनने का या पढ़ने का टाइम नहीं। और हम लोग उसके पास जाते भी थे, बड़ी बहनें, टीचर्स बहनें इधर उधर से, फिर भी बैठती नहीं थी खुद। तो इसलिए क्या है कि ऐसा भी हमारा न हो कारोबार कि हम घर में बहुत बिजी हो जाएं, और ऐसा भी हमारा कारोबार न हो कि हम सिर्फ सेवा में और पढ़ाई में बिजी हो जाए, घर को ध्यान ना रखें। तो इसलिए एक तो हमें पहला है ये देहभान तोड़ना है, फिर देह से और देह के संबंधियों से हमारा कोई मोह ना रहे, तो ये देखना है, क्योंकि प्यार तो सबके साथ होता है और होना भी चाहिए, परंतु मेरा है ये बुद्धि में आया, मोह पड़ गया। यदि आत्मिक दृष्टि भाई भाई की नहीं रही और समझेंगे ये तो मेरा पति है, या ये तो मेरा बच्चा है, या तो ये तो मेरी बेटी है, आदि आदि, तो मेरे में लगाव में हमारी बुद्धि खींचेंगी, भाई टाइम पर नहीं आया, खाया नहीं खाया, कब आएगा, क्यों आज देरी हो गई, तो सारा दिन संकल्प चलते रहेंगे। खाना पकाते समय भी बाबा की याद के बजाय बच्चों को याद करेंगे, इस बच्चे को ये खाना अच्छा लगता है, उस बच्चे को ये खाना लगता है, पति को ये खाना अच्छा लगता है, तो क्या पकाना है, कितना मसाला डालना है, ये ही सोचती रहेंगी, बाबा को याद नहीं करेंगी। तो इसलिए देखना है, क्योंकि लगाव होगा तो नेचुरली है रोना पड़ेगा, यदि कुछ गड़बड़ी हुई रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, क्योंकि जब वो है तो अपेक्षा रहती है कि तुम मेरा है, मेरा कहना मानना है, मैं जो कहूँ वो ही करो, बच्चों को समझती है, अपना कंट्रोल रखना चाहती है ना। तो इसलिए हमको ये देखना है कि सब कुछ बाबा का है, ये बुद्धि में पक्का हो, तब समझो हमारा लगाव छूटेगा। चाहे साधन है उनसे भी लगाव ना हो, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, कभी कभी तो अपनी कुर्सी के साथ मोह जाता है, कभी कभी अपनी गद्दी के साथ मोह हो जाता है, कभी कभी अपने तकिए से, गदेले से, सबसे मोह हो जाता है, ये मेरा है, उसको कोई हाथ ना लगावे, कोई हाथ लगाता है तो दुख होता है, तो इसलिए देखना है मेरापन ना हो, भल साधनों का उपयोग करे लेकिन साधनों पर डिपेंड ना करे, उसके आधारित ना बन जाए, ये हमको बुद्धि में ध्यान रखना है। और तीसरा विकार है अहम, तो ये देखना है हमारे में जो भी विशेषता है, क्योंकि कईयों में गीत सुनाने की विशेषता होंगी, कईयों में खाना पकाने की विशेषता होंगी, आप में से किसी में समझो सिलाई की विशेषता होंगी, किसी को ज्ञान सुनाने की विशेषता होंगी, किसी का योग लगाने से, योग में बैठने से और बिठाने से उसको, कई बार कोई कहेंगे हाँ आपने आज योग कराया, हमारा तो मन एकदम बाबा में लग गया, हमने साक्षात्कार किया आपसे, लाइट का ये वो, तो कई बार उसका हमको अभिमान आ जाता है कि मेरा योग बहुत अच्छा है, या मैं जो ज्ञान सुनाती हूँ सबको बहुत पसंद आता है, तो ये विशेषता का अभिमान ना हो, क्योंकि विशेषता देने वाला बाबा है। देखो जब अज्ञानता में क्या होता था, कोई पूछता था ना कि आपको कितने बच्चे हैं, और ज्यादा बच्चे होते हैं तो क्या कहेंगे, जो भगवान ने दिया है। किसी के पास धन होगा और उसको कोई पूछेगा कितना धन है, फिगर नहीं बताना है ना, तो कहेंगे जो भगवान ने दिया है, तो वैसे कहेंगे जो भगवान ने दिया है, परंतु मेरा समझ लेते हैं। इसलिए ये देखना है कि जरा भी अहम ना हो, जो भी हमारी विशेषता है बाबा ने हमें गिफ्ट में दी है, ज्ञान में आने के बाद हमको ये सारी गिफ्ट मिली है, तो बाबा को अर्पण करनी है हमारी विशेषता, अपने को क्रेडिट नहीं लेनी है, महिमा अपनी नहीं समझनी है, बाबा की महिमा बाबा ने जो दिया है, तो इसलिए ये देखना है। भल ज्ञान के पहले भी वो विशेषता हो, परंतु ज्ञान में आने से वो विशेषता जरूर अधिक होती है, जैसे कहते हैं ना सुवर्ण में सुगंध मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक्टर्स बहुत आते थे, सिंगर्स और म्यूजिशियन वगैरह सब बहुत ज्ञान में आते थे, तो वो बताते थे कि जब पहला शो होता था ना ओपनिंग, तो बहुत नर्वस हो जाते थे ज्ञान के पहले कि आज पता नहीं हमारा परफॉर्मेंस कैसा होगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे या नहीं, रिपोर्ट पता नहीं न्यूज़पेपर वाले क्या देते हैं हमारे बारे में, तो नर्वस हो जाते थे, जैसे परीक्षा होती है स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं ना, ऐसे वो भी नर्वस हो जाते थे, क्योंकि पहला दिन जैसे एग्जाम होती है सारे सब न्यूज़पेपर वाले आकर रिपोर्ट देते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, कहता था कि ज्ञान के पहले मैं नर्वस हो जाता था, अभी मैं नर्वस नहीं होता था, अभी मुझे आत्मविश्वास बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, इतने तक कि एक बारी एक म्यूजिशियन था सितार बजाने वाला, उसके साथ है वो गीत गाने वाला, बहुत फेमस, बहुत पुराना गीत गाने वाला, तो वो स्टेज पर नर्वस हो गया, तो कहता है मेरा तो अभी आवाज ही नहीं निकलता है, अभी शो है मैं क्या करूंगा, तो ये भाई हमारा जो ब्राह्मण था उसने उसको थोड़ी आदत दी, उससे योग कराया और फिर वो एकदम गाना शुरू कर दिया, तो सिर्फ खुद को नहीं आत्मविश्वास बढ़ता है, हम औरों को भी शांत करा सकते हैं, इसलिए ज्ञान की महिमा करनी है, बाबा की महिमा करनी है और अपने को महिमा नहीं स्वीकार करनी है, नहीं तो हमें अभिमान आ जाएगा। तो जो अभिमान वाले हैं वो थोड़ा बॉसी होते हैं, वो जो कहे सबको मानना है, जो कहे सबको करना है, नहीं करते तो गुस्सा आ जाता है। तो अपने विचारों को श्रेष्ठ समझता है और नाजुक स्वभाव भी होता है उनका। इसलिए हमें देखना है कि हम बात बात में अपसेट ना हो जाए। नाजुक स्वभाव वाले क्या है, बात बात में अपसेट हो जाएंगे, फिर बहाना बताएंगे कि फलाने ने ऐसे किया इसलिए हम अपसेट हो गए। परंतु वास्तव में हमें ये देखना है कि हम नाजुक स्वभाव वाले नहीं रहे। बाबा कहते हैं सेंसिटिव नहीं बनो, सेंसिबल बनो, एसेंसफुल बनो। तो हमें ज्ञान से समझदारी से काम करना है और अपसेट नहीं होना है, अपने जीवन में धारणा करनी है। फिर है काम विकार, क्योंकि हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो काम विकार का सूक्ष्म रूप क्या है, क्योंकि काम विकार मैं देखती हूँ कि मेजोरिटी माताओं के लिए सहज है ब्रह्मचर्य का पालन करना, परंतु बाबा कहते हैं आज भी कहा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहो, और इतने तक कि स्वप्न में भी विकारी ख्यालात ना आवे। तो ये देखना है हमारा मनसा में भी किसी से हम आकर्षित नहीं होते। कोई व्यक्ति को देखकर यदि हम आकर्षित हो जाते हैं, व्यक्ति या वस्तु, तो ये भी सूक्ष्म काम विकार है। उससे प्रभावित हो जाते हैं कि हाँ भाई इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत स्वरूपवान है, तो ये भी एक सूक्ष्म है काम विकार का रूप। फिर बाबा कहते हैं फैमिलियरिटी भी ना हो, तो ये देखना है हमारा किसी के साथ फैमिलियरिटी तो नहीं है, जो सारा दिन उसको याद करें, उसका ही फोन करें, उसको ही अपने दिल की बात सुनाएं। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा दिलवर हूँ, तुम्हारे दिल की बात मुझे सुनाओ ना, व्यक्तियों को सुनाने की क्या बात है। तो इसलिए ऐसी हमारी फ्रेंडशिप ना हो जो हम बाबा को भूल जाए, और नाम रूप का प्यार भी ना हो कि किसी के नाम रूप में हम फंसे रहे। अभी माताओं को तो ये ज्यादा नहीं होता होगा नाम रूप में फंसने की बात, परंतु क्या है ये भी देखना है कि किसी ना के व्यक्ति के रूप को हमारी बुद्धि में घड़ी घड़ी ना आए, उसी के नाम का स्मरण ना करें, अपने पति का भी। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, कई पत्नी है सारा दिन मेरा पति ये, मेरा पति वो, ये ऐसे कहता है, ऐसे करता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, सारा दिन अपने पति की बात सबको करते रहते हैं। तो ये भी तो नाम रूप का प्यार हुआ ना, जिसको याद करेंगे उसका रूप सामने आएगा। तो इसलिए शिव बाबा करने के बजाय वो लोग अपने पति को याद करती रहती है। तो ये देखना है हमारे में ये नाम रूप का प्यार भी ना हो। फिर देखना है कि हमारे में कोई लोभ ना हो। लोभी क्या है, लोभी की निशानी सूक्ष्म में और स्थूल में हमको जानना चाहिए। जो लोभी है वो क्या है, जरूरत के ज्यादा उसको चाहिए चाहिए चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, तो रोज नए नए कपड़े खरीदेंगे, रोज नए नए गहने खरीदेंगे, कितने भी कपड़े हैं परंतु नई फैशन का है इसलिए खरीद लिया, और खरीदते भी जाएंगे और पुराना फेंकेंगे भी नहीं, तो उसके पास कबट के कबट कपड़ों का जमा होगा। और जो लोभी है वो मनुष्य होंगे। चाहे कितना भी पैसा है, दान पुण्य करने के समय सोचेंगे और 1% 2% मुश्किल देंगे और समझेंगे हमारा नाम हो, उनको नाम मान शान की इच्छा रहती है। और जो लोभी हैं उनको वो स्वार्थी होता है। हाँ, हमारे पास एक बहन थी, उसके 8 भाई बहने थे, तो वो क्या करेंगे, 8 भाई बहन है तो वो फिर क्या करेंगी, सबसे पहले अपना खाना निकाल लेंगी। वो सोचेंगी नहीं कि दूसरों को भी खाना है, उनके लिए भी कुछ बचा है, वो सबसे पहले इतना इतना खाना निकाल लेंगी। तो क्या होता है कि जो लोभी है वो दूसरों का ख्याल नहीं करते हैं, खुद को ही चाहिए चाहिए करके जमा करते जाएंगे और उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। अच्छा खाना लगा तो जरूरत से ज्यादा खाएंगे, अच्छा खाना नहीं लगा तो कहेंगे आज हमको भूख नहीं है, आप लोग खा लो। तो इसलिए देखना है कि हम हमारे में लोभ का अंश मात्र न हो। और गुस्सा तो आप जानते हो, परंतु स्थूल में तो गुस्सा ना हो, मारपीट ना करो, गाली ना दो, परंतु सूक्ष्म में भी गुस्सा ना हो। सूक्ष्म में गुस्सा क्या होता है, चिड़चिड़ापन। और जब गुस्सा है तो कहेंगे चलो तुमको जो करना है करो, मैं नहीं जानती कुछ, ठीक तरह से जवाब नहीं देंगे, सहयोग किसी को नहीं देंगे कि नहीं ये तेरा काम है तुम करो, मैं नहीं जानती कुछ। तो इसलिए देखना है कि गुस्से के कारण हमें औरों का अनादर नहीं करना है। और इतने तक कि नहीं, कई बार गुस्सा है तो चेहरे पर आ जाता है, मन में ही गुस्सा है चेहरे पर आ जाएगा, दिखाएंगे नहीं पर चेहरे पर आ जाएगा और दबाने से और भी बीमार होंगे। तो इसलिए देखना है हमारे में गुस्सा ना हो, हमारे में आलस अलबेलापन ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आलसी लोग होते हैं ना वो बहानेबाजी करेंगे, मैं तो थकी हुई हूँ तुम कर लो, मतलब चाहेंगे कि कोई अपना काम कर लेवे और हम आराम से बैठे रहें। तो वो आराम पसंद होते हैं और पूरी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं, कहेंगे हाँ मैं करूंगी करूंगी, फिर कहेंगे अभी कल करूंगी, अभी होऊंगा कैसे होऊंगा, फलाने को कहो ना, तो जिम्मेवार नहीं रहते हैं। और जो जो अलबेले है उनको समय शक्ति धन का कदर नहीं है, फालतू गंवाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं संगम युग का समय और खजाने बहुत मूल्यवान है, तो इसलिए मूल्यवान खजानों को हमें संभल के चलाना है, ना कि ऐसे गंवा देना है। तो ये देखना है कि संकल्प भी हमारा फालतू ना जाए, ज्ञान का खजाना भी फालतू ना जाए, जिसको इंटरेस्ट है उनको सुनाओ, ऐसे नहीं कि सबको ज्ञान सुनाते रहो। ये भी हमारा खजाना है समय संकल्प का, तो ये देखना है कि हम उसको गंवाएं नहीं। और जिनमें समान की कमी है उनमें ईर्ष्या होंगी, दूसरों की प्रशंसा होती है वो देख नहीं सकते, इसलिए ये देखना है कि हमारे में ईर्ष्या ना हो और घृणा भी ना हो किसी से, न लगाव हो न तिरस्कार हो और वैर भावना भी ना हो। जिसने भी हमारे से कुछ भी खराब किया है उसको हमको क्षमा करना है और शुभ भावना और शुभकामना रखनी है, ना कि वैर भाव रखना है। क्योंकि जितना हम पास्ट को भूल जाएंगे और किसी ने कुछ बुरा किया है, क्यों किया है, कोई भी हमारा बुरा करता है क्यों करता है, क्योंकि उसको अच्छा करना नहीं आता इसलिए बुरा करता है, तो इसलिए जो बुरा बोलने वाले हैं, बुरा करने वाले हैं, बाबा कहते हैं उसको साक्षी होकर देखो और शुभ भावना से और अपने एग्जाम्पल से उनको मदद करो। तो इसलिए ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम बाबा की ये श्रीमत है संपूर्ण निर्विकार, उस पर चलते हैं। और बाबा ने ये भी श्रीमत दी है कि हमें योगी बनना है, उसमें भी सबसे पहले अमृत वेले 4 से 4:45 बाबा को याद में बैठना है, क्योंकि वो समय ऐसा है कि जब बाबा कहते हैं मैं भक्तों के लिए मेरी क्यों खुलती है 5:30 के बाद, उसके पहले मैं सिर्फ बच्चों से मिलता हूँ और बच्चों को जितना चाहिए खजाना देता हूँ, तो उस समय सिर्फ बाबा के सामने बच्चे होते हैं, तो बाबा से हम संपूर्ण खजाना ले सकते हैं। तो इसलिए अमृत वेले हमें लक्ष्य लेकर बैठना है कि आज मुझे बाबा से कौन सी शक्ति लेनी है, और सवेरे सवेरे सो जाना है। बाबा कहते हैं 10 बजे के आसपास सो जाओ, 3:30-4 बजे उठ जाओ, उठकर 1/4 घंटा बाबा की याद में बैठो, उसमें हम सुस्ती ना करें या बहानेबाजी ना करें कि भाई आज तो हम बहुत बिजी है, चलो सवेरे सवेरे तो आराम कर ले, मैं इसे सारा दिन तो बाबा कहते हैं कर्मयोगी बनना है इसलिए हम सारा दिन कर्म करते करते याद करेंगे, ऐसे करके अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना है। यदि रात को ऐसे सोच के सोते हैं कि आज तो हम बहुत थके हैं, सारा दिन हमने इधर उधर भाग दौड़ के बिताया है, ऐसे करके जब सोते हैं तो सोचते हैं मैं थका हुआ हूँ, तो सवेरे उठेंगे तो क्या कहेंगे, मैं थका हूँ, और थके हैं तो समझेंगे चलो लेट के याद करें, कमर दुखती है चलो लेट के याद करें, तो लेट के याद करना कैसा होगा, सो जाएंगे थोड़े टाइम में। इसलिए बाबा कहते उठकर चाय पानी पी के या स्नान पानी करके फ्रेश होकर बाबा की याद में बाबा के कमरे में बैठो। यदि अपने घर में बाबा का कमरा ना है तो कम से कम एक कॉर्नर में बाबा की कॉर्नर बनाओ। भक्ति में क्या करते थे, घर में थोड़ी मंदिर के लिए एक जगह रख देते थे फिक्स, वहां ही बैठकर पूजा करते थे। तो इसी रीत से ज्ञान में भी एक अपनी जगह फिक्स रखो कि जहां बैठकर आप योग कर सको, और आप जब बैठे हो तो आपके घर वाले भी समझे कि आप योग में बैठे हो तो डिस्टर्ब ना करें। हमारे पास एक विदेशी माता थी, उसको उसने क्या किया कि अपनी जो पेंट्री होती है किचन का सामान का स्टोर रखने का, उसको अपने उसने बाबा का कमरा बनाया और फिर उसको वहां बैठकर योग करती थी। घर वालों को बता दिया मैं जब वहां बैठी हूं मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, इतने तक कि उसके साथ एक कुत्ता था, कुत्ते को भी डायरेक्शन था तुम अंदर नहीं आ सकता यहाँ, नहीं तो कुत्ता को नहीं तो चुप अपने कुत्ता घर का होता है ना, उसको सारा फ्रीडम होता है, बेड में भी सोता है उसके साथ, और जहाँ माता जाएंगी वहाँ साथ में जाएगा। परंतु वो उसने उसको डायरेक्शन दे दिया था कि ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए क्या है कि वो कुत्ता भी नहीं जाता था। इसी रीत से बाबा हमको कहते हैं कि हमें क्या करना है, बाबा कहते हैं कि अपने को ध्यान रखना है कि हमेशा हम अपना नियम से बाबा की याद में बैठे, उसमें सुस्ती नहीं करे, क्योंकि वही हमारा श्रेष्ठ कमाई का समय है। जैसे बाबा कहते हैं कई बार कमाई के समय पर लोग क्या करेंगे, जरा भी चुटका नहीं खाएंगे। रात को भी जिसकी संजय ड्यूटी होती है तो क्या करेंगे, दिन में सो जाएंगे और रात को अलर्ट होके बैठते हैं। और बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि देखो कई देशों में रात को शिप आता है, रात को शिप आता है तो शॉप रात को भी खुली रखेंगे। तो इसी रीत से ये कमाई के समय हम कैसे अपना समय गंवा सकते हैं। और मम्मा की भी विशेषता आपको मालूम है कि मम्मा कभी अमृत वेला मिस नहीं करती थी। रात को 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, परंतु उसका 2:30 बजे उठने का, 2:30 बजे उठने का नियम माना, उठ जाना। कहती थी ये तो मेरे पीयू से मिलने का टाइम है, हम जैसे कोई का अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का टाइम हो कैसे मिस कर सकता है। इसी जिससे बाबा भी हमारा पीयू है, उसको मिलने का टाइम हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो अमृत वेले पर हमको बहुत ध्यान रखना है और सारा दिन हमको दया ध्यान रखना है, कर्म करते करते बाबा की याद में रहे। कई लोग तो है जब खाना पकाते कुछ भी करते हैं टेप रिकॉर्डर चालू है, चाहे प्रवचन चालू है, चाहे गीत बाबा के चालू है, तरता की गीत तो सुनते सुनते बाबा की याद रहे। तो इसलिए कर्मयोगी रहना है, खाना पकाते समय किसके लिए पकाते उसका याद नहीं करना है, बाबा को याद करना है। और शाम को 7 से 7:30 आधा घंटा, रात को सोने के पहले बाबा के याद में बैठना है। तो ये अपना नियम हमको देखना है कि उस नियम पर हम ठीक रहते हैं। और रात को अपना चार्ट लिखना, ये भी बाबा की एक श्रीमत है कि सोने के पहले अपना चार्ट देखो कि आज सारे दिन में कौन से ज्ञान का मंथन किया, कौन सी ज्ञान की पॉइंट धारण की, बाबा को कितना समय याद किया, हमारा योग जब हम योग में बैठे तो साधारण रहा, पावरफुल रहा, या मन इधर उधर भागता रहा। तो अपना योग का चार्ट देखो, ज्ञान का चार्ट देखो, धारणा का चार्ट देखो कि आज हमने दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, अच्छा कितनों को सुख दिया, कितनों की आशीर्वाद प्राप्त की, कितनों को ज्ञान दिया, कितनों को दो शब्द आश्वासन के देखकर सुख दिया। तो ये अपना चेक करना है सारे दिन का चार्ट कि हमने कितनी कमाई की, क्योंकि ज्ञान मंथन से कमाई होती है, योग से कमाई होती है, धारणा से कमाई होती है और सेवा से कमाई होती है। कितनी की, कितनों की सेवा की हमने, तन से, मन से, धन से, वचन से, क्या आज हमने सेवा की और अपना भाग्य बनाया। तो ये रोज अपना ये भी चार्ट देखना है कि हमको समय मूल्य है, हम ये मूल्यवान समय में समय हमारा गंवाते तो नहीं, संकल्प हमारा फालतू तो नहीं चलता है, क्योंकि अब तक हमने संकल्पों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मन को फ्रीडम दे दिया सारी जिंदगी, जो सोचना है सोचो। अभी बाबा कहते हैं ये देखो व्यर्थ संकल्प है, नेगेटिव संकल्प है, या बाबा की याद का संकल्प है, ज्ञान का मंथन का समय संकल्प है। तो इसलिए ये देखना है, पास की बातों को सोचना नहीं है, पास को फुल स्टॉप देना सीखो, और भविष्य की चिंता ना हो, क्योंकि जितना ड्रामा पर हम खड़े रहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा, जो भी होने वाला है बहुत अच्छा, ये पाठ हमारा पक्का होना चाहिए। तो फ्यूचर की हमको चिंता नहीं रहेंगे कि भविष्य में क्या होगा, हाँ भविष्य की चिंता नहीं करो। और माताओं को विशेष ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ भी जाओ हमारा लक्ष्य रहे सेवा करना है, क्योंकि कई बार सामाजिक व्यावहारिक कार्य करना पड़ता है, हाँ तो जाओ भले जाओ, परंतु बाबा कहते हैं सेवा जरूर करो। और देखो कि सिर्फ हम वहाँ समय तो व्यर्थ नहीं गंवाते, क्योंकि कई लोग हैं वो जैसे शादी में जाएंगे तो घंटों के घंटे बैठे रहेंगे, जहाँ 5 मिनट का काम है वहाँ घंटा क्यों लगाए। तो इसलिए ये देखना है कि जो जरूरी है जरूर करो, परंतु उससे ज्यादा अपना समय शक्ति बोल नहीं गंवाओ, इतने तक कि अपने बोल पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ के बोलो। क्योंकि यदि हम कड़वे वचन बोलते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं, तो क्या होगा, ये भी हमारा पाप कर्म हो जाता है। इसलिए हमको बोलना भी सोच कर है, न सिर्फ सोच के बोलना है परंतु उसमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार कई माताओं को सेवा का बहुत शौक होता है, तो हम सबको ज्ञान देते रहेंगे, खास घर वालों को ज्ञान देते रहेंगे, तो क्या होगा, यदि घर वालों को इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करेंगे, आपका भी इंसल्ट करेंगे, ज्ञान का भी इंसल्ट करेंगे, तुमको तो यही आता है, छोड़ो ये बात हमको नहीं सुनना है, छोड़ो, तुम जानो तुम्हारे बाबा जाने, हमको बाबा से कोई लेन देन नहीं, ऐसे इंसल्ट कर देगा ना कि तुम्हारा और ब्रह्मा कुमारियों से हमारा कोई लेन देन नहीं है, तुम ब्रह्मा कुमारियों की बात नहीं लाओ। तो जिनको इंटरेस्ट नहीं है उसको नहीं सुनाओ, और जिनको इंटरेस्ट है उनको भी बाबा कहते हैं कोर्स करने के लिए भी अपना टाइम फिक्स करो, ये कोर्स है 1 घंटे का है, उसमें 40 मिनट कोर्स कराओ, 10 मिनट उनके प्रश्न उत्तर दो, 10 मिनट योग कराओ, आदि आदि। तो उसी अनुसार ऐसे नहीं 1 घंटे का लेसन हम 3 घंटा तक बोलते रहें तो 2 घंटा तो हमने व्यर्थ गंवाया ना, समय भी गया, हमारी शक्ति भी व्यर्थ गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये आप बहुत ध्यान में रखना है कि हम अपना समय है फालतू नहीं गंवाते, संकल्प फालतू नहीं गंवाते, बोल फालतू नहीं गंवाते। और दूसरा बाबा कहते हैं अपने संग का ध्यान रखो, किसके संग में आप रहते हैं, ये भी एक बहुत महत्व के डायरेक्शन है बाबा की श्रीमत है कि कौन किसका संग करना है। क्योंकि कई बार कईयों को आदत है जैसा भी फ्री टाइम मिला फोन पर सखियों से बात करेंगे, क्या हुआ, क्या खाया, कहाँ गए, कहाँ जाने वाले हैं, क्या शॉपिंग की, कहाँ से शॉपिंग की, कितना खर्च किया आदि आदि। तो ये बाबा कहते हैं झरमुई झरमुई में अपना समय नहीं गंवाओ, फ्री टाइम मिला ज्ञान की पढ़ाई पढ़ो, देखो कितने अच्छी अच्छी बुक्स बाबा की लिखी हुई है, कितने अच्छे अच्छे क्लास रेडियो पर टेलीविजन पर आते रहते, सारा दिन पीएम टीवी चालू है। ऐसे नहीं कि हमको बैठकर फिल्म देखनी है, घर वालों को इंटरेस्ट है भले देखें, उनको थोड़ी मना कर सकते हैं, परंतु वो बैठे हैं इसलिए हम साथ में बैठ जाएं, ये नहीं। फिल्म में इंटरेस्ट ना हो, फालतू स्टोरी बुक में हमारा इंटरेस्ट ना हो, उसमें समय न गंवाएं। हाँ, इधर उधर पड़ोसी पड़ोसी के पास आने जाने में और फालतू बातें करने में समय नहीं गंवाएं। और माताओं तो ज्यादा इंटरनेट पर काम नहीं करती है, बाकी जो इंटरनेट जानते हैं वो उसमें भी तो बहुत वेस्ट करते हैं, सारा दिन इंटरनेट देखते रहते हैं। और आजकल तो मोबाइल में व्हाट्सएप सबके साथ, फेसबुक में, सोशल मीडिया में अपना फ्रेंडशिप के साथ बातचीत करते रहेंगे, फ्री में मिलता है, तो खर्चा भर पैसे का नहीं करते परंतु समय का तो खर्चा होता है ना। तो इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा समय बहुत वैल्यूएबल है। वो भक्ति में भी गाते हैं, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोया। तो ऐसे भी नहीं, हम खाना पकाने में, सफाई करने में और सोने में ही अपना समय गंवाएं, क्योंकि समझेंगे हम सोए, हमने कोई पाप कर्म तो नहीं किया ना, हमको आदत है ना, 8 घंटा तो रात को जरूर सोना चाहिए, 2 घंटा दिन में तो जरूर याद सोना चाहिए, ये नहीं, पुरानी आदत को नहीं चलाना है। पुरानी आदत को नहीं चलाना है, पुराने रस्म रवाज के अनुसार काम नहीं करना है, अपने आप को घड़ी घड़ी याद कराना है, हम कौन है, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है, पढ़ना और पढ़ाना, भगवान से शादी कराना, ये हमारा कर्तव्य है। सेवा करके हर एक का कनेक्शन परमात्मा से जुटाना है, ये हमारा कर्तव्य है, विश्व कल्याण का हमारा कर्तव्य है, ये बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कोई ऐसे ना कहे कि हम तो बहुत फुर्सत है, पता नहीं क्या करें, क्या करें, क्यों, इतनी बुक्स है पढ़ो, इतनी कैसेट्स है, सीडीज है, डीवीडीज है, देखो, कुछ ज्ञान धारण करो, तो इसमें आपका समय चला जाएगा। और जहाँ भी चांस मिले सेवा करते रहो, जिसको सेवा का शौक होगा, बाबा कहते ना बस स्टॉप पर खड़े हैं वहाँ भी बातचीत कर सकते हैं, ट्रेन में जाते हो वहाँ भी सेवा कर सकते हो, क्योंकि जब ट्रेन में मुसाफरी करते हैं तो यदि सफेद कपड़े होंगे तो सब आएंगे कहेंगे आप ब्रह्मा कुमारी हो, बैच देखकर सब पहचान जाएंगे आप ब्रह्मा कुमारी हो, फिर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ भी जाओ बैच जरूर पहनो और पर्चे साथ में जरूर रखो, और जहाँ भी चांस मिले, कहते हैं ना बिच्छू है वो नरम चीज देकर डंक लगाता है, तो हमारे अंदर भी परखने की शक्ति होनी चाहिए कि किसको ज्ञान की जरूरत है उसको जरूर ज्ञान देवें। साधारण रीति से बातचीत करते क्या क्यों कहाँ ऐसे करके फिर ज्ञान सुनाना शुरू कर दो। तो इसी रीत से सेवा का भी हमें इतना शौक होना चाहिए और हमारे पास एक माता थी, वो सेवा के लिए इधर उधर आती जाती रहती थी। फिर उसके उसको कैंसर हुआ, तो कैंसर के कारण वो इतना बाहर नहीं जा सकती थी, तो क्या करती थी, फोन पर बैठकर अपने जो भी पहचान वाले हैं उनको फोन पर ध्यान देती रहती थी। तो इस रीति से हमको देखना है, बाबा कहते हैं हर एक के घर में चित्र जरूर हो, जो भी मित्र संबंधी आए उनको चित्रों पर समझाओ। तो इसलिए जितना हमें सेवा का शौक होगा तो नेचुरली है हम सेवा करते रहेंगे, अपना भाग्य बनाएंगे और औरों को भी सुख शांति का रास्ता बताएंगे। तो इसलिए जो बाबा की श्रीमत है, भल कईयों को मुश्किल लगती है, नए नए तो है समझते हैं, ब्रह्मा कुमारी बनना, खान पान छोड़ना, सफेद कपड़े पहनना, रोज सवेरे 4 बजे उठना, हाँ ये तो मुश्किल है, वो तो डर जाते हैं साधारण लोग तो। परंतु हम जानते हैं कि ये भी जो भी हमारे नियम है, दिनचर्या है, वो हमारे लाभ के लिए बाबा ने बनाई है। ऐसे नहीं कि हम सारा दिन बाबा को याद करें तो बाबा को कुछ फायदा होगा या उसका अहम है वो पूरा होगा कि हाँ मुझे सब याद करते हैं, नहीं, हम उनको याद करते हैं अपनी शक्ति का खजाना लूटने के लिए। तो इसलिए अपने नियम को समझ लो कि बाबा ने क्यों ये सारी श्रीमत दी है, उससे हमें कितने फायदे होते हैं और वो हमको बाबा के फरमान अनुसार जितना हम आज्ञाकारी फरमान बरदार बनेंगे हमको ही लाभ है, उसमें बाबा को कोई लाभ नहीं है, हमारा ही कल्याण होगा। इसलिए भल दुनिया वालों को तो ये मुश्किल लगता है, परंतु हमारे लिए तो ये सहज ज्ञान सहज राजयोग है और उसकी धारणा भी हमारे लिए कितनी सहज हो गई। दुनिया वाले समझते घर बार में रहकर पवित्र रहना, लोभ ना हो, मोह ना हो, काम विकार ना हो, ये असंभव है, और बाबा ने हमारे लिए सब संभव कर दिया, इतने तक कि कैसे हम गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं, उसका हमको एग्जाम्पल बनाया है। और बाबा को गर्व है कि हमारे बच्चे घर में रहकर अपना जीवन ऐसा पवित्र बनाते हैं। तो इसलिए बाबा की जो आज्ञा है हमारे सर माथे हो और उस श्रीमत में अपना कल्याण क्या भरा है वो समझकर हमें बाबा की श्रीमत का पालन करना है, अपना खान पान शुद्ध रखना है, अपना संग अच्छा रखना है, क्यों खान पान की मर्यादा तो मेजोरिटी के लिए सहज है वेजिटेरियन बनना, पर प्याज लहसुन भी ना खाएं और नॉन ब्राह्मण का भी पकाया हुआ ना खाएं, ये भी जो श्रीमत है उसका पालन करने से भी कहते हैं ना अन्न वैसा मन, तो जितना अन्न हम शुद्ध खाएंगे, शुद्ध हाथ का पकाया हुआ, बाबा की याद में पकाया हुआ, बाबा को भोग लगाया हुआ, तो उससे क्या होगा, अपना ही कल्याण होगा। क्योंकि जैसे हम दिन में 3 बारी खाते हैं, कम से कम बाबा को घरों में रहने वाले भी कम से कम 1 बार भोग लगावे और वो प्रसाद बनाकर घर में सबको खिलाएंगे तो उनका मन भी शुद्ध हो जाएगा। इसलिए इस खान पान की बातों पर भी हमें पूरा ध्यान रखना है कि बाजार की चीज हम ना खाएं। हमारी माँ लौकिक वैष्णव थी तो वो भी बाजार का खाना नहीं खाती थी, प्याज लहसुन नहीं खाती थी। तो हम तो सच्चे सच्चे वैष्णव है, सच्चे सच्चे ब्राह्मण है, तो हमको ये देखना है कि हमारा खान पान भी बिल्कुल शुद्ध हो। ओम शांति। तो दो मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे।
बाबा जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार,
दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत
का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।